ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। तीन दिनों से हुई लगातार बारिश के कारण 87 लोगों की हुई मौत, 72 लोग लापता। काठमांडू घाटी में ही 34 लोगों की हुई मौत। अवरुद्ध सड़कों को सुचारू करने और उद्धार व राहत पर समूचा ध्यान केंद्रित करने का सरकार का निर्णय। इन दिनों हो रही सभी परीक्षाएं हुई स्थगित। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बाढ़ व भूस्खलन से हुई क्षति पर किया दुख व्यक्त। और दक्षिण पूर्वी अमेरिका में हेलेन आंधी के कारण कम से कम 45 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। तीन दिनों से हुई लगातार बारिश के कारण देश भर का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित बना हुआ है। लगातार बारिश के बाद आए बाढ़ और भूस्खलन के कारण काठमांडू घाटी समेत देश भर के अब तक 79 लोगों की मौत हो चुकी है और 72 लोग लापता है और 35 लोग घायल भी है। ये जानकारी सशस्त्र प्रहरी के प्रवक्ता डॉक्टर डीआईजी कुमार न्यूपाने ने दी। उन्होंने बताया कि सिर्फ काठमांडू घाटी में 48 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 25 भक्तपुर में और 25 काठमांडू में, भक्तपुर में 5 और ललितपुर में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह कोसी प्रदेश में 10 और बागमती में 29 लोगों की मौत दर्ज की गई है। इसी तरह पांचथर में 5, धनकुटा में 2, सोलुखुम्बू में 2, सुनसरी में 1, काभरे में 14, धादिंग में 1, सिंधुपालचौक में 5, दोलखा में 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं अब तक कुल 79 लोगों के लापता होने की बात सामने आई है। बता दें कि ललित पुर में 15, काभरे में 26, काठमांडू में 6, मकवानपुर में 7, दोलखा में 3, झापा में 4, पांचथर में 5, सिंधुपालचौक में 5 सहित अन्य विभिन्न जिलों को मिलाकर अब तक 79 लोगों के लापता होने की खबर है। वहीं 200 से अधिक घरों में क्षति पहुंची है। अब तक 2000 से अधिक लोगों का उद्धार किया गया है। नेपाल प्रहरी के सह प्रवक्ता एसएसपी विश्व अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा निकाय सहित उद्धार में संलग्न संघ संस्थाओं के सहकार्य से उद्धार काम जारी है। उनके मुताबिक देश भर की अधिकांश सड़कें अवरुद्ध है। कई स्थानों में बिजली की आपूर्ति में समस्या होने के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित बना हुआ है। बाढ़ व भूस्खलन के कारण काठमांडू में 4 घर ढह गए हैं। वहीं भक्तपुर में 1 घर में क्षति हुई है। बता दें कि काठमांडू घाटी में 2241 घर डुबान में है, जिसमें काठमांडू में 1324, ललितपुर में 500 और भक्तपुर में 400 घर शामिल है। सरकार ने इन दिनों जारी रही सभी परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय किया है। लगातार हुई बारिश के कारण हुई जनधन की क्षति के बारे में समीक्षा करने के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री प्रकाश मान सिंह की अध्यक्षता में आज सिंह दरबार में बुलाई गई सरकार की आपातकालीन समन्वयात्मक बैठक ने यह निर्णय किया। ये जानकारी सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने दी। बैठक ने आपदा में जान गंवाने वालों के परिवार को क्षतिपूर्ति और राहत मुहैया कराने, अवरुद्ध सड़कों को खुलवाने के साथ ही उद्धार और राहत में समूचा ध्यान केंद्रित करने का निर्णय किया। बैठक ने बाढ़ भूस्खलन के कारण कुछ क्षेत्रों में अवरुद्ध टेलीफोन सेवा, बिजली और पेयजल लगायत सेवाओं को सुचारू करने का संबद्ध पक्षों को निर्देश किया है। साथ ही यह जानकारी साझा करने के साथ कि बाढ़ व भूस्खलन में फंसे हुए लोगों के उद्धार और राहत के लिए सरकार की हॉटलाइन सेवा संचालित है। बैठक ने इसके जरिए संपर्क में आने का आग्रह भी किया है। संचार मंत्री गुरुंग ने बताया कि उद्धार और राहत के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी की हॉटलाइन सहित गृह मंत्रालय के हॉटलाइन में संपर्क किया जा सकने का प्रबंध किया गया है। लगातार बारिश के बाद आए बाढ़ व भूस्खलन के कारण देश भर में 23 सड़कों के 63 स्थानों में यातायात पूरी तरह अवरुद्ध है। प्रारंभिक विवरण के मुताबिक काठमांडू घाटी में प्रवेश करने वाले सभी नाके अवरुद्ध है। यह जानकारी सड़क विभाग ने दी। हालांकि विभाग के मुताबिक बिजली और इंटरनेट प्रभावित होने के कारण सभी स्थानों से विवरण संकलित नहीं हो सका है। कूलेखानी जलविद्युत परियोजना के जलाशय को खोले जाने के कारण कांति लोकपथ में बागमती पुल उच्च जोखिम में है। बीपी राजमार्ग अंतर्गत नेपाल थोक से थोड़ा आगे रोशी नदी में आई बाढ़ के करीब 100 मीटर सड़क बहा ले गई है। सड़क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक त्रिभुवन राजमार्ग पूरी तरह अवरुद्ध है और निको राजमार्ग अंतर्गत सिंधुपाल चौक में लारचा पुल बाढ़ में बहने के कारण यातायात संजाल पूरी तरह से टूट चुका है। इसी तरह पृथ्वी राजमार्ग अंतर्गत का नौवीं से मुगलिंग पोखरा सड़क खंड अवरुद्ध है और निको राजमार्ग अंतर्गत काठमांडू धूलीखेल धोला घाट खाड़ी चौड़ कोदारी खंड भी अवरुद्ध है। दूसरी तरफ राप्ती राजमार्ग का अमेलिया शीतलपाटी थारमारे मुसीकोट खंड अवरुद्ध है। सिद्धार्थ राजमार्ग अंतर्गत बुटवल बुरतुंग रामदी श्यांगजा पोखरा सड़क भी अवरुद्ध है। इसी तरह देश के विभिन्न क्षेत्रों में रास्ते अवरुद्ध हैं। गृह मंत्री रमेश लेखक ने कहा कि प्राकृतिक विपज्जन्य घटना के कारण जोखिम में पड़ने वालों को उधार और राहत को लेकर सरकार गंभीर है। केंद्रीय सुरक्षा समिति की बैठक के बाद संचार कर्मियों के साथ बातचीत के दौरान गृह मंत्री लेखक ने ये बात कही। गृह मंत्री लेखक रमेश लेखक की अध्यक्षता में आज गृह मंत्रालय में हुए मनसून पूर्व तैयारी तथा प्रतिकार्य कमांड पोस्ट की बैठक से बारिश के कारण हुए जनधन की क्षति का विवरण संकलन करने तथा उद्धार एवं राहत के कार्यों को और भी प्रभावकारी बनाने का निर्णय किया है। बैठक में गृहमंत्री लेखक ने भारी बारिश के कारण उत्पन्न विषम परिस्थिति का सामना तथा तत्काल उद्धार तथा राहत के काम और भी प्रभावकारी रूप में संचालन करने के लिए सुरक्षा निकाय एवं संयंत्र को सक्रियतापूर्वक प्रभावित स्थान में परिचालन करने का निर्देश भी किया। इसी तरह बैठक में गृहमंत्री लेखक ने अवरुद्ध सड़कों को यथाशीघ्र खुलाने की ओर विशेष ध्यान देने के लिए भी निर्देश किया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलीकॉम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नजी नेपाल टेलिकमको 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने लगातार हो रहे भीषण बारिश के कारण हुए जनधन की क्षति के बारे में दुख जिज्ञासा और चिंता व्यक्त की है। राष्ट्रपति पौड़ेल ने गृहमंत्री रमेश लेखक को टेलीफोन करके भीषण बारिश के कारण हुए जनधन के क्षति के बारे में जानकारी लेते हुए बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुए जनधन के क्षति प्रति दुख व्यक्त करते हुए उद्धार तथा राहत कार्यों में तत्काल जुटने का माथहत के निकाय को प्रभावकारी काम करने का निर्देश किया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्राकृतिक विपत्ति से बचने और सभी को मिलकर इसका सामना करने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की 79वीं महासभा में सहभागी होने के दौरान अमेरिका में रहे प्रधानमंत्री ओली ने आज सामाजिक संजाल मार्फत देशभर भारी बारिश के कारण हुई जनधन के क्षति प्रति दुख व्यक्त करते हुए बाढ़ और भूस्खलन से सतर्कता अपनाने का सभी से आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ओली ने संबंधित जिलों के प्रमुख जिला अधिकारियों से जिम्मेवारी पूर्वक उद्धार कार्य को आगे बढ़ाने का निर्देश भी किया। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा ने देश के अधिकांश स्थानों में बारिश के कारण बाढ़ भूस्खलन और डुबान में पड़के हुए जनधन के क्षति प्रति दुख व्यक्त किया है। आज सभापति देउवा द्वारा जारी विज्ञप्ति मार्फत प्राकृतिक विपत्ति में जान गंवाने वालों के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए शोक संतप्त परिवारजनों में हार्दिक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। लगातार बारिश के साथ सप्तकोसी नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण कोसी और गंडक बैरेज के सभी गेट को खोला जा चुका है। जलस्तर में हुए वृद्धि के मद्देनजर कोसी बैरेज के सभी 56 गेट खोला गया है। ये जानकारी सुनसरी के जिला के प्रवक्ता नवीन कृष्ण भंडारी ने दी। बता दें कि तटीय क्षेत्र के बासिंदा से सतर्कता अपनाने का आग्रह किया गया है। काठमांडू और धादिंग के सीमा पर रहे धादिंग के धुनी बेशी नगर पालिका वार्ड नंबर 9 में झापले नदी में भूस्खलन में पड़के सवारी साधन के धस जाने के बाद 14 लोगों के शव को निकाला गया है। बता दें कि प्रमुख जिला अधिकारी राजेंद्र देव पांडे के मुताबिक 3 सवारी साधन में दबे थे ये शव, जिनको निकाला जा चुका है। इसी बीच कोसी बैरेज के पुल से संपर्क आवत जावत बंद किया गया है। सप्तकोसी में पानी के बहाव के खतरा के तह पार करके आज शाम 4 बजे से अगली सूचना जारी न होने तक के लिए कोसी बैरेज के पुल पर आवागमन में रोक लगाया गया है। ये जानकारी सुनसरी के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी वेदराज फुयाल द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लिखित है। स्थानीय प्रशासन ने बारिश के कारण हो सकने वाले क्षति के मद्देनजर नारायणगढ़ मुगली नागढुंगा सड़क में सवारी संचालन में रोक लगाया गया है। आज जिला प्रशासन कार्यालय चितवन द्वारा आज एक सूचना जारी करके सूचित किया गया कि रविवार सुबह 5 बजे तक के लिए संपूर्ण सवारी साधन संचालन पर रोक लगाया गया है। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल ने कहा कि सूचना के हक को प्रभावकारी क्रियान्वयन से ही लोकतंत्र मजबूत होगी। आज सूचना के हक में सर्वव्यापी पहुंच संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2081 के अवसर पर राष्ट्रीय सूचना आयोग द्वारा काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष दहाल ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत बनाकर जनता के अधिकार की रक्षा के लिए सूचना के हक का प्रभावकारी क्रियान्वयन होना चाहिए। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका में तूफान हेलेन ने फ्लोरिडा और दक्षिण पूर्वी अमेरिका में भारी तबाही मचाई है। तूफान की अधिकतम गति 225 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जब गुरुवार देर रात यह फ्लोरिडा के ग्रामीण बिग बेंड क्षेत्र में एक कम आबादी वाले क्षेत्र में पहुंचा। इसने ऊंचे ऊंचे पेड़ों को तिनके की तरह उखाड़ दिया और घरों को तहस नहस कर दिया है। इसकी चपेट में आकर 45 लोगों की मौत हो गई है। बचाव दल ने लोगों को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए मिशन शुरू किया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 3 दिनों से हुई लगातार बारिश के कारण 87 लोगों की हुई मौत, 72 लोग लापता, काठमांडू घाटी में ही 48 लोगों की हुई मौत। अवरुद्ध सड़कों को सुचारू करने और उद्धार व राहत पर समूचा ध्यान केंद्रित करने का सरकार का निर्णय। इन दिनों हो रही सभी परीक्षाएं हुई स्थगित। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बाढ़ व भूस्खलन से हुई क्षति पर किया दुख व्यक्त। और दक्षिण पूर्वी अमेरिका में हेलेन आंधी के कारण कम से कम 45 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।